नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर बात करने वाले हैं, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की रचना परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्मीकृत जीवनचर्या।
जी,
इस किताब के कुछ खास हिस्सों पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, सूक्ष्मीकरण।
हाँ,
तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर था क्या और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी।
बिल्कुल। और देखिए, इसे सही ढंग से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। गुरुदेव के जो दशकों लंबे सार्वजनिक काम थे और उस समय की जो विकट परिस्थितियां थीं,
जिन्हें युग संधि कहा गया है।
हाँ, वही युग संधि, मतलब एक युग परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण समय। तो यही सब वजहें थीं, इसी पृष्ठभूमि में इस सूक्ष्मीकरण जैसे कदम की जरूरत महसूस हुई।
अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। पुस्तक में यह साफ बताया गया है कि गुरुदेव की जो इतनी क्षमता थी उसका आधार क्या था, उनकी गहन साधना।
बिल्कुल।
15 साल की उम्र में ही उन्होंने जौ की रोटी और छाछ पर 24 लक्ष्य गायत्री महापुरुष चरण पूरे कर लिए थे।
24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप, सोचिए जरा कितनी गहन साधना रही होगी वो।
हाँ, और इसी तप से जो शक्ति मिली, वही उनके इतने सारे कामों का, इतना साहित्य लिखने का, संगठन चलाने का, सबका आधार बनी।
और यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि फिर बदलाव क्यों जरूरी हो गया, है ना? वंदनीय माताजी लिखती हैं कि लगभग 60 साल तक लगातार लोगों की भलाई के कामों में और अपने इतने बड़े प्रज्ञा परिवार को प्राण चेतना देने में।
प्राण चेतना मतलब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का हिस्सा देना।
हाँ बिल्कुल, अपनी जीवन ऊर्जा का अंश। तो इसमें उनकी वो जो शुरुआती साधना से मिली ऊर्जा थी वो काफी खर्च हो गई। मतलब आप कह सकती हैं कि जमा कम खर्च अधिक वाली स्थिति हो गई थी थोड़ी।
अच्छा, तो इतने साल लगातार काम करने के बाद एक तरह का ऊर्जा का असंतुलन,
समाज का टूटना, युद्ध के खतरे।
हाँ, वो दौर तो था ही मुश्किल भरा।
तो इन सब समस्याओं के हल के लिए सिर्फ बौद्धिक या पैसों वाले साधन काफी नहीं लग रहे थे। एक बहुत बड़ी, समझिए, आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत महसूस हो रही थी, और वो शक्ति तो नई और ज्यादा गहरी साधना से ही मिल सकती थी।
तो यही पे ये सूक्ष्मीकरण का कॉन्सेप्ट आता है।
जी,
इसका मतलब क्या हुआ?
बाहरी भागदौड़ कम करना, लोगों से सीधा मिलना जुलना कम करके ज्यादातर समय एकांत में गहरी साधना में लगाना।
हाँ, सीधा सा मतलब यही था। वंदनीय माताजी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे वो आतिशी शीशा होता है ना, सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करके आग जला देता है।
हाँ हाँ,
या जैसे बंदूक की नली में बारूद एक जगह केंद्रित होकर निशाने को भेदता है।
बिल्कुल वैसे ही, बिखरी हुई ऊर्जा को समेटना, एकाग्र करना।
मतलब ये कोई आराम करना या जिम्मेदारियों से भागना नहीं था।
बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहुत बड़े आने वाले काम के लिए शक्ति जुटाने की तैयारी थी, एक तरह से रिचार्ज होना।
लेकिन जो उनके अनुयायी थे उनको तो चिंता हुई होगी कि अब सीधा मिलना नहीं होगा, मार्गदर्शन कैसे मिलेगा।
हाँ, स्वाभाविक है, चिंता तो हुई, लेकिन वंदनीय माताजी ने ये बात बहुत स्पष्ट की कि देखिए, जो सूक्ष्म जगत है उसका असर स्थूल जगत पर कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली होता है।
अच्छा, कैसे?
जैसे हमारे शरीर के लिए जो दिखता है उसे ज्यादा जरूरी क्या है? अदृश्य प्राण, है ना?
हाँ, सही बात है।
या जैसे वाणी के स्तर होते हैं परापश्यन्ति मध्यमा बैखरी, तो जो सूक्ष्म वाणियां हैं जो बिना बोले काम करती हैं वो इस सुनाई देने वाली वाणी से कहीं ज्यादा ताकतवर मानी जाती हैं।
यानी कि अप्रत्यक्ष जुड़ाव और भी गहरा होने वाला था, ये कहना था उनका।
बिल्कुल, वंदनीय माताजी ने उन महान आत्माओं को याद दिलाया जैसे ऋषि ददीची, उन्होंने तो अपनी हड्डियां तक दे दी देवताओं को शक्ति देने के लिए परोक्ष रूप से।
हाँ, ये उदाहरण तो हम सबने सुना है।
या जैसे भगीरथ जो अपने अकेले तप से गंगा को धरती पर ले आए।
हाँ,
तो ये सब क्या दिखाता है कि एकाग्र निस्वार्थ तपस्या भले ही एकांत में हो, वो अप्रत्यक्ष रूप से भी समाज का बहुत बड़ा भला कर सकती है।
अच्छा,
सूक्ष्मीकरण का भी यही एक लक्ष्य था। उन्होंने आज के समय के श्री अरविंदो और महर्षि रमन का भी उदाहरण दिया कि उनकी एकांत साधना ने भी देश के लिए एक अच्छा सकारात्मक सूक्ष्म वातावरण बनाया, तो भरोसा यही दिलाया गया कि इस नई व्यवस्था से मार्गदर्शन और मदद पहले से भी ज्यादा असरदार तरीके से मिलेगी।
पुस्तक में कुछ गलतफहमियों को भी दूर किया गया है ना?
हाँ बिल्कुल, वंदनीय माता जी बताती हैं कि कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद गुरुदेव थक गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, या जिम्मेदारियों से हट रहे हैं, या हमेशा के लिए हिमालय जा रहे हैं।
अच्छा, ऐसी बातें भी थी?
हाँ थी, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ये सब सच नहीं है। उन्होंने इसकी तुलना की शेर से, जैसे शेर शिकार पर झपटने से पहले दो कदम पीछे हटता है ना,
हाँ?
ताकि पूरी ताकत से हमला कर सके। बिल्कुल, तो ये वैसी ही तैयारी थी और भी प्रचंड शक्ति के साथ काम करने की। इसमें सूक्ष्म शरीर की सक्रियता बढ़ने की भी बात है, जिससे वो एक ही जगह रहकर भी पहले से कहीं ज्यादा बड़े क्षेत्र पर अपना प्रभाव डाल सकते थे।
तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो ये सूक्ष्मीकरण एक बहुत सोची समझी शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया थी।
जी हाँ, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये भारत की जो प्राचीन ऋषि परंपरा है उसी का पालन करते हुए आज के युग की जो भयानक चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए
और मानवता को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए।
हाँ, उसके लिए जो जरूरी आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए उसे पैदा करने के लिए इसे अपनाया गया था। ये व्यक्ति और समाज दोनों के गहरे बदलाव का एक बहुत अनूठा प्रयोग था।
ये वाकई सोचने वाली बात है, अगर एकाग्र एकांत आध्यात्मिक साधना में इतनी ताकत हो सकती है कि वो माहौल को बदल दे, दूसरों को शक्ति दे, तो आज के समय में किसी व्यक्ति या समूह की जो केंद्रित इच्छा शक्ति है, जो संकल्प है,
चाहे वो पारंपरिक आध्यात्मिक तरीकों से अलग ही क्यों ना हो।
हाँ बिल्कुल, तो उसमें समाज और दुनिया को बेहतर बनाने की कितनी अनदेखी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं, इस पर विचार करना चाहिए।